अध्याय 26 लाल समुद्र से सिने तक। यह अध्याय निर्गमन 15 आयत 22 से 27, 16 से 18 पर आधारित है। बादल के स्तंभ के मार्गदर्शन में इसराइलियों ने लाल समुद्र से आगे की यात्रा प्रारंभ की। उनके आसपास का दृश्य डरावना था। अनावृत उजाड़ से पहाड़, बंजर भूमि, फैला हुआ समुद्र जिसके किनारे पर उनके शत्रुओं के शव बिखरे पड़े थे, लेकिन फिर भी वे स्वतंत्रता की चेतना में आनंद से भरपूर थे और असंतोष के प्रत्येक विचार को शांत कर दिया गया था। लेकिन यात्रा के तीसरे दिन तक भी उन्हें पानी नहीं मिला। जो पानी पीने व अपने साथ लाए थे समाप्त हो चुका था। उनकी तीव्र प्यास को बुझाने के लिए कुछ नहीं था और वे झुलसे हुए मैदान में थक कर धीमी गति से चलते रहे। मूसा, जो इस क्षेत्र से परिचित था, वह जानता था जो दूसरे नहीं जानते थे, कि वहां के निकटतम स्थान मारा में जल के स्रोत थे, लेकिन उसका पानी पीने योग्य नहीं था। अत्यधिक उत्सुकता के साथ वह मार्गदर्शक बादल को देखता रहा। डूबते हृदय से उसने लोगों को प्रसन्नतापूर्वक पानी पानी चिल्लाते हुए सुना। आनंद से उतावले हुए पुरुष, स्त्रियां और बच्चे फव्वारे के पास इकट्ठे हुए, लेकिन फिर समुदाय में से एक दर्दनाक आवाज आई, पानी खारा था। भय और निराशा में डूबे उन्होंने मूसा पर इस तरह मार्गदर्शन कराने का आरोप लगाया। वे ये भूल गए कि उस रहस्यमयी बादल में ईश्वरी उपस्थिति उन्हीं का नहीं, मूसा का भी मार्गदर्शन कर रही थी। उनकी पीड़ा पर दुखी होकर मूसा ने परमेश्वर को सहायता के लिए पुकारा और यहोवा ने उसे वह पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। यहां पर मूसा के माध्यम से इसराइल को वचन दिया गया, यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। तब वे मारा से एलीम को आए, जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे। यहां सिने के निर्जन प्रदेश में प्रवेश करने से पहले वे कई दिन रहे। मिस्र देश से निकलने के एक महीने बाद उन्होंने इस निर्जन प्रदेश में अपना पहला डेरा डाला। उनके पास सामग्री का भंडार समाप्त होने लगा था। उस उजाड़ प्रदेश में बहुत कम घास थी और उनकी भेड़ बकरियां कम होती जा रही थीं। इतने बड़े जनसमूह के लिए खाद्य सामग्री कहां से मुहैया कराई जाएगी? उनके हृदय संकोच से भर गए और वे बड़बड़ाने लगे। परमेश्वर द्वारा नियुक्त अगुवों के विरुद्ध आरोप लगाने में अधिकारी और बड़े बुजुर्ग भी सम्मिलित हो गए। जब हम मिस्र देश में मांस की हंडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ में मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखा मार डालो। अभी तक उन्होंने भूख के कारण कष्ट नहीं उठाया था। उनकी वर्तमान आवश्यकताएं पूरी की जा रही थीं, लेकिन वे भविष्य के लिए डरते थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उस निर्जन प्रदेश में यात्रा के दौरान इतने बड़े जनसमूह का भरण पोषण कैसे होगा, और वे अपने बच्चों के भूखे मरने की कल्पना करने लगे। परमेश्वर ने उन्हें कठिनाइयों से घिरने दिया और उनकी खाद्य सामग्री की आपूर्ति भी सीमित कर दी, ताकि उनके हृदय उसकी ओर आकर्षित हो सके जो अभी तक उनका मुक्तिदाता रहा था। यदि अपनी घटी में वे उसको पुकारते थे तो वह तब भी उन्हें अपने प्रेम और देखभाल के स्पष्ट संकेत देता था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि यदि वे उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उन पर कोई रोग नहीं आएगा, और उनका ऐसा सोचना कि उनके बच्चे भूख से मर जाएंगे पापमयी अविश्वास के बराबर था। परमेश्वर ने उनका परमेश्वर होने की, उन्हें अपना बनाने की, उन्हें एक विशाल और खुशहाल देश में ले जाने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन वे उस प्रदेश के मार्ग पर आने वाली प्रत्येक बाधा का सामना करने में मूर्छित होने को तत्पर थे। वह उन्हें आश्चर्यजनक तरीके से मिस्र में उनके दासत्व से बाहर निकाल लाया था, ताकि वो उन्हें उदात और उन्नत और पृथ्वी पर प्रशंसा योग्य बना सके। लेकिन अभावों को सहन करना और कठिनाइयों का सामना करना उनके लिए आवश्यक था। परमेश्वर उन्हें अप्रतिष्ठा की अवस्था से निकालकर जातियों में सम्मानजनक स्थान ग्रहण करने हेतु और पवित्र व आवश्यक दायित्व ग्रहण करने के लिए सुयोग्य बना रहा था। उसके द्वारा उनके लिए किए गए कार्यों पर दृष्टि करके यदि उन्होंने परमेश्वर में विश्वास रखा होता तो उन्होंने असुविधा, अभाव और अत्याधिक कष्ट भी प्रसन्नतापूर्वक सहन कर लिए होते। लेकिन ना तो वे प्रभु पर और आगे विश्वास करने को और न ही उसकी सामर्थ्य के नित्य प्रमाणों के साक्षी होने को सहमत थे। वे मिस्र में अपने अप्रिय अनुभव को भूल गए। वे दासत्व से उनके छुटकारे में उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ्य और भलाई के प्रदर्शन को भी भूल गए। वे भूल गए कि जब विनाशक स्वर्गदूत ने मिस्र के सभी पहलौठों का वध किया, किस तरह उनके बच्चों को छोड़ दिया गया था। वे लाल समुद्र पर ईश्वरीय शक्ति के महान प्रदर्शन को भूल गए। वे भूल गए कि उनके लिए खोले हुए मार्ग पर चलकर वे सुरक्षापूर्वक पार हो गए। लेकिन उनके शत्रुओं को, जो उनका पीछा करने का प्रयत्न कर रहे थे, समुद्र के जल ने पराजित कर दिया। उन्होंने केवल अपनी असुविधाओं और परीक्षाओं पर ध्यान दिया और ये कहने के बजाय कि यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं, जबकि हम दास थे, वो हमें एक महान जाति बना रहा है। वे रास्ते की कठिनाइयों की बातें कर रहे थे और सोच रहे थे कि उनकी दुखदायी तीर्थयात्रा कब समाप्त होगी। इसराइल के निर्जन प्रदेश में बिताए जीवन के इतिहास अंतिम समय तक परमेश्वर के इसराइल के लाभ के लिए इतिवृत्त किया गया। मरुधर भ्रमण में परमेश्वर का घुमक्कड़ों के साथ व्यवहार का उल्लेख, भूख, प्यास और थकावट का उनका अनुभव, उनके सुख चैन के लिए परमेश्वर का विस्मयकारी प्रदर्शन, सभी युगों में उसके लोगों के लिए निर्देश और चेतावनियों से भरपूर है। इब्रियों के विभिन्न अनुभव, कनान में उनके प्रतिज्ञाबद्ध घर के लिए उपक्रम की शिक्षा थी। इन दिनों में परमेश्वर अपने लोगों से इसराइल द्वारा अनुभव की हुई परीक्षाओं को दीन हृदय और सिखाने योग्य स्वभाव से समीक्षा करवाना चाहता था, ताकि स्वर्गीय कनान की तैयारी में उनको निर्देशित किया जा सके। कई लोग पीछे मुड़कर इसराइलियों को देखते हैं और उनके अविश्वास और बड़बड़ाहट पर अचंभा करते हैं, और उन्हें लगता है वे स्वयं उतने कृतज्ञहीन नहीं होते। लेकिन जब उनके विश्वास को सामान्य परीक्षाओं द्वारा भी परखा जाता है, तो वे भी उतना ही विश्वास और धैर्य प्रकट करते हैं जितना कि प्राचीन इसराइली करते थे। जब उन्हें कष्टप्रद स्थानों में लाया जाता है, तो वे परमेश्वर द्वारा चुनी गई उनके शुद्धिकरण की विधि पर बड़बड़ाते हैं। हालांकि उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं की आपूर्ति कर दी जाती है, फिर भी बहुत से लोग भविष्य के लिए परमेश्वर पर विश्वास करने को असहमत हैं और हमेशा चिंतित रहते हैं कि वे निर्धन हो जाएंगे और उनके बच्चों का कष्ट उठाना पड़ेगा। कुछ लोग पहले से ही विपदा के बारे में सोचते रहते हैं या विद्यमान कठिनाइयों को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं, जिससे उनकी आंखें उन आशीषों को देखने के लिए अंधी हो जाती हैं जिनके लिए उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। जो बाधाएं उनके सामने आती हैं, वे उन्हें शक्ति के एकल स्रोत, सहायता के लिए परमेश्वर के पास ले जाने के बजाय उनमें असंतोष और अशांति जागृत करके उन्हें उससे दूर कर देती हैं।
इस प्रकार अविश्वासी होने में क्या हम अच्छा करते हैं? हम अकृतज्ञ और संदिग्ध चित्त क्यों हों? यीशु हमारा मित्र है, संपूर्ण स्वर्ग हमारे कल्याण में रुचि रखता है, और हमारी उत्सुकता और हमारा डर परमेश्वर की पवित्र आत्मा को दुखी कर देते हैं। हमें ऐसी चिंता में नहीं पड़ना चाहिए जो हमें केवल क्षति पहुंचाती है और कठिन परिस्थितियों को सहन करने में सहायता नहीं करती। हमें परमेश्वर के प्रति अविश्वास को कोई स्थान नहीं देना चाहिए जो भविष्य की आवश्यकताओं के लिए तैयारियों को हमारे जीवन का लक्ष्य बना दे, जैसे कि हमारी सुख शांति इन्हीं सांसारिक वस्तुओं में हो। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि उसके लोग बोझ से दबे हों, लेकिन प्रभु ये नहीं कहता कि हमारे मार्ग में कोई भी खतरे नहीं। वो अपने लोगों को बुराई और पाप से भरे जगत से बाहर ले जाने का प्रस्ताव नहीं रखता, वरन वो एक सुनिश्चित शरण स्थान का संकेत देता है। वो थके हुओं और बोझ से दबे लोगों को आमंत्रित करता है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सांसारिक दायित्व और चिंता का जुआ जो तूने अपनी गर्दन पर रखा हुआ है, उसे निकाल फेंको और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन से दीन हूं।
तुम अपने मन से आराम पाओगे। मत्ती 11 आयत 28-29। हम अपनी सारी चिंता उस पर डालकर परमेश्वर में शांति और आराम पा सकते हैं, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। पहला पत्रस 5 आयत 7 देखिए। पौलुस प्रेरित कहता है, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, उसी दृष्टि से हमारा विश्वास दृढ़, सक्रिय और चिरस्थायी होना चाहिए। बड़बड़ाने और शिकायत करने के बजाय हमारे हृदय से ये शब्द निकलने चाहिए, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझमें है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कह, और उसके उपकार को न भूलना। भजन संहिता 103 आयत 1-2। परमेश्वर इज़राइल की आवश्यकताओं के प्रति उदासीन नहीं था। उसने उनके अगुओं को कहा, मैं तुम्हारे लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। और निर्देश दिए गए कि लोग प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करें और छठवें दिन दुगनी मात्रा में, ताकि विश्राम दिन की पवित्र व्यवस्था को कायम रख सकें। मूसा ने कलीसिया को आश्वस्त किया कि उनकी आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी। यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को पेट भर रोटी देगा। और हम क्या हैं? तुम्हारा बड़बड़ाना हम पर नहीं, यहोवा ही पर होता है। फिर उसने हारून से उनको कहलवाया, यहोवा के सामने आओ, क्योंकि उसने तुम्हारा बड़बड़ाना सुना है। जब हारून बोल ही रहा था, उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा और यहोवा का तेज बादल में दिखाई दिया। ऐसी भव्यता जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, ईश्वरीय उपस्थिति का प्रतीक थी। उनकी इंद्रियों को संबोधित करने वाले प्रदर्शनों के माध्यम से उन्हें परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना था। उन्हें यह सिखाना था कि केवल वो मनुष्य मूसा नहीं, वरन वो जो सर्वोच्च है उनका अगुवा है, ताकि वे उसके नाम का भय माने और उसकी आज्ञा का पालन करें। सांझ को बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गई और वे पूरे जनसमूह की आवश्यकता की आपूर्ति के लिए पर्याप्त थी। भोर होने पर भूमि की सतह पर एक छोटी गोल सी वस्तु, जो पाले के किनकों के समान थी, पड़ी हुई मिली। वो धनिये के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। लोगों ने उसे मन्ना कहा। मूसा ने कहा, ये वही भोजन वस्तु है जो यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। लोगों ने मन्ना को इकट्ठा किया और उन्हें पता चला कि वो सबके लिए पर्याप्त मात्रा में था। वे उसे चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे, और उसका स्वाद शहद में बने पुए के समान था। उन्हें निर्देश दिया गया कि प्रतिदिन प्रति मनुष्य के पीछे एक एक ओमेर बटोरे और सवेरे तक नहीं रख छोड़ना था। किसी ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो सुबह तक वो मन्ना खाने योग्य नहीं रहा। खाद्य सामग्री को प्रातःकाल ही इकट्ठा करना था, क्योंकि जो कुछ भी भूमि पर रह जाता था सूर्य की गर्मी से पिघल जाता था।
मन्ना के इकट्ठा करने में ये पाया गया कि किसी ने नियत मात्रा से अधिक और किसी ने कम मन्ना पाया। लेकिन जब उन्होंने उसको ओमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके पास अधिक न रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी नहीं हुई। इस पवित्र वचन का अर्थ और उससे प्राप्त व्यवहारिक उपदेश पौलुस द्वारा कुरिन्थियों की दूसरी पत्री में दिया गया है। ये नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको क्लेश मिले, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़त उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़त भी हो। जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम न निकला। दूसरा कुरिन्थियों 8 आयत 13-15। छठवें दिन लोगों ने प्रत्येक मनुष्य के पीछे दो ओनेर इकट्ठा किए। मंडली के सब प्रधानों ने शीघ्र ही जाकर मूसा को इस बात से अवगत कराया। मूसा ने उत्तर दिया, ये वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा, इसलिए तुम्हें जो तंदूर में पकाना हो उसे पकाओ, और जिसे उबालना है उबालो, और इसमें से जितना बचे उसे सवेरे के लिए रख छोड़ो। उन्होंने ऐसा नहीं किया और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तब मूसा ने कहा, आज उसी को खाओ, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है, इसलिए आज तुमको वह मैदान में न मिलेगा। 6 दिन तो तुम उसे बटोरा करोगे, परंतु सातवां दिन विश्राम का दिन है, उसमें वह न मिलेगा।
परमेश्वर अपेक्षा करता है कि उसके पवित्र दिन को आज भी वही मान्यता मिले जो इज़राइल के समय में दी जाती थी। इब्रियों को दी गई आज्ञा को सब मसीहियों द्वारा यहोवा का आदेश माना जाना चाहिए। विश्राम दिन से पहले वाला दिन तैयारी का दिन होना चाहिए, ताकि उसकी पवित्र घड़ियों से संबंधित सब कुछ तैयार हो। किसी भी परिस्थिति में हमारी निजी व्यवस्था को पवित्र समय पर हावी नहीं होने देना चाहिए। परमेश्वर का निर्देश है कि रोगियों और पीड़ितों की देखभाल की जाए। उनके आराम के लिए किया गया परिश्रम दया का काम है, विश्राम दिन का खंडन नहीं। लेकिन अनावश्यक कार्यों को टाल देना चाहिए। कई लोग उन छोटे छोटे कार्यों को जो तैयारी के दिन किए जा सकते थे, विश्राम दिन के प्रारंभ होने तक छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन कार्यों की विश्राम दिन के प्रारंभ तक अवहेलना की जाती है, उन्हें विश्राम दिन के बीत जाने तक नहीं करना चाहिए। ये नियम वे जो बेपरवाह है उनको विश्राम दिन का स्मरण कराएगा, और वे अपने निजी कार्य 6 कामकाजी दिनों में करने का ध्यान रखेंगे। निर्जन प्रदेश में लंबे समय तक डेरा लगाए रखने के दौरान प्रत्येक सप्ताह इसराइली 1 तिहरा चमत्कार के साक्षी होते थे, जो विश्राम दिन की पवित्रता को उनके मनों पर अंकित करने के लिए किए जाते थे। 6वें दिन दुगनी यात्रा में मन्ना बरसता था, वह 7वें दिन बिल्कुल नहीं, और विश्राम दिन के लिए आवश्यक भाग मीठे और शुद्ध रूप से संरक्षित रहता था, जबकि अन्य दिनों में दूसरे दिन तक रखे रहने पर प्रयोग में लाने योग्य न रहता था। मन्ना के दिए जाने से संबंधित परिस्थितियों में हमारे पास निर्णायक प्रमाण है कि विश्राम दिन का संस्थापन सिने पर्वत पर 10 आज्ञाओं के देने के समय नहीं हुआ था, जैसा कि कई लोग दावा करते हैं। सिने आने से पहले इसराइली समझते थे कि विश्राम दिन को मानने के लिए वे कर्तव्यबद्ध हैं। विश्राम दिन को मन्ना नहीं गिराया जाता था। इस दिन की तैयारी के लिए शुक्रवार को 2 गुना भाग इकट्ठा करने के निर्देश के द्वारा विश्राम दिन के पवित्र स्वभाव को लगातार उन्हें स्मरण कराया जाता था। और जब कुछ लोग विश्राम दिन पर मन्ना इकट्ठा करने बाहर गए, तो परमेश्वर ने पूछा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्था को कब तक नहीं मानोगे? इसराइली जब तक बसे हुए देश में न पहुंचे, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। वे जब तक कनान देश की सीमा पर नहीं पहुंचे, तब तक मन्ना खाते रहे। 40 वर्षों तक इस चमत्कारी प्रेम और सहानुभूति का प्रतिदिन स्मरण कराया गया। भजन लेखक के शब्दों में परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया, मनुष्यों ने स्वर्गदूतों का खाना खाया। भजन संहिता 78:24-25, जिसका तात्पर्य है स्वर्गदूतों द्वारा उनके लिए दिया गया खाना। स्वर्ग के अन्न को खाकर जीवित मनुष्यों को सिखाया गया कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा के होते हुए वे घटी के प्रति ऐसे सुरक्षित थे मानो उपजाऊ तराइयों के लहराते अनाज के खेतों से घिरे हुए हों। मन्ना, जो इसराइल को जीवित रखने के लिए स्वर्ग से गिरता था, उसका प्रारूप था, जो संसार को जीवन देने के लिए परमेश्वर की ओर से आया। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी में हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। और भावी जीवन में परमेश्वर के लोगों के लिए आशीर्वाद की प्रतिज्ञाओं में लिखा है, जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:17। सीन नामक जंगल से निकलने के पश्चात इसराइलियों ने रपीदीम में डेरा डाला। यहां पर पानी नहीं था, और फिर से उन्होंने परमेश्वर की शक्ति पर अविश्वास किया। अपनी अज्ञानता और घृष्टता में वे लोग मूसा के पास ये मांग लेकर आए, हमें पीने को पानी दे। लेकिन उसका धैर्य बना रहा। उसने कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों लेते हो? वे क्रोध से बड़बड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? जब उन्हें बहुतायत से खाना मुहैया कराया गया, उन्होंने शर्मसार होकर अपने अविश्वास और अपनी बड़बड़ाहट का स्मरण किया और भविष्य में प्रभु पर विश्वास रखने की प्रतिज्ञा की। लेकिन वे शीघ्र ही अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए और अपने विश्वास की प्रथम परीक्षा में असफल रहे। उनका मार्गदर्शन करने वाला बादल का स्तंभ एक भयानक रहस्य पर पर्दा डाले प्रतीत हो रहा था। और मूसा कौन था वह, वे पूछ रहे थे, और उनको मिस्र से लाने में उसका क्या उद्देश्य था? उनके हृदय संदेह और अविश्वास से भर गए, और उन्होंने उस पर निर्भीकता से आरोप लगाया कि उसने उन्हें और उनके बच्चों को कठिनाइयों और अभावों से मार डालने का षड्यंत्र रचा था, ताकि वो स्वयं को उनकी धन संपत्ति से धनवान बना सके। घृणा और क्रोध के कोलाहल में वे उस पर पथराव करने वाले थे। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? उसे इज़राइल के वृद्ध लोगों और मिस्र में जिसके प्रयोग से आश्चर्यकर्म किए गए थे, उस लाठी को लेकर लोगों के आगे आगे जाने को कहा गया। और परमेश्वर ने उससे कहा, देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं। उसने वैसा ही किया और जीवंत जल की धारा फूट पड़ी, और पूरे डेरे को बहुतायत से जल प्राप्त हुआ। मूसा को लाठी उठाकर इन बड़बड़ाते हुए सरदारों पर किसी भयानक विपत्ति को बुलाने की आज्ञा देने के बजाय अपनी करुणा में प्रभु ने उसी लाठी को उनके छुटकारे के लिए अपना साधन बनाया। वो जंगल में चट्टानों को फाड़कर उनको मानो गहरे जलाशयों से पानी पिलाता था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया। भजन संहिता 78 आयत 45-16। मूसा ने चट्टान पर लाठी से मारा, लेकिन उस बादल के स्तंभ में आवृत परमेश्वर का पुत्र था, जिसने मूसा के पास खड़े होकर जीवनदायी पानी को बहाया। न सिर्फ मूसा और पुरनियों ने, वरन दूर खड़ी समस्त कलीसिया ने प्रभु की महिमा के दर्शन किए। लेकिन यदि बादल को हटा दिया जाता तो उसमें रहने वाले तेज प्रकाश ने उन्हें मार दिया होता। प्यास के प्रभाव में लोगों ने ये कहते हुए परमेश्वर को परखा, प्रभु हमारे बीच में है या नहीं? यदि परमेश्वर हमें यहां लेकर आया है तो वह हमें रोटी और पानी क्यों नहीं देता? इस प्रकार प्रकट किया हुआ अविश्वास आपराधिक था, और मूसा को डर था कि परमेश्वर की दंडाज्ञा उन पर आएगी, और उसने उस स्थान का नाम मस्सा, परीक्षा और मरीबा, डांटना रखा। ये उनके पाप का स्मारक था।
अब उनके ऊपर एक नया खतरा मंडरा रहा था। उनकी बड़बड़ाहट के कारण परमेश्वर ने उनके दुश्मनों द्वारा उन पर आक्रमण होने दिया। अमालेकी, उस क्षेत्र में रहने वाली एक उग्र रणकुशल जाति, उनसे लड़ने को आ गए और उन सबको मार गिराया जो थक कर पीछे रह गए थे। ये जानते हुए कि अधिक संख्या में लोग युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे, मूसा ने यहोशू को कहा कि वो अलग अलग कुटुंबों में से योद्धाओं का एक समूह चुने और दुश्मन से लड़ने में उनका नेतृत्व करें, और वो स्वयं परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहेगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू और उसकी टोली ने अमालेकियों पर आक्रमण किया, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए, अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाए व अपने सीधे हाथ में परमेश्वर की लाठी पकड़े हुए मूसा ने इज़राइल की सेनाओं की सफलता के लिए प्रार्थना की। युद्ध के दौरान ये देखा गया कि जब तक मूसा अपना हाथ ऊपर उठाए रहता तब तक इज़राइल प्रबल होता, परंतु जब उसके हाथ नीचे आ जाते तो शत्रु विजयी होने लगता। जब मूसा थक गया तब हारून और हूर सूर्यास्त तक उसके हाथों को संभाले रहे, और तब शत्रु को खदेड़ दिया गया। हारून और हूर ने मूसा के हाथों को उठाए रखने में लोगों को ये बताया कि जब मूसा उन्हें बताने के लिए परमेश्वर के आदेश को ग्रहण करे, ये उनका कर्तव्य था कि उस कठिन काम में वे उसका समर्थन करें। मूसा की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उससे पता चलता था कि उनका भविष्य परमेश्वर के हाथों में था। जब वे उस पर विश्वास रखेंगे वो उनके लिए लड़ेगा और उनके शत्रुओं को वश में करेगा, लेकिन जब वे उसे छोड़कर स्वयं की योग्यता पर विश्वास करेंगे तो वे उनसे भी दुर्बल हो जाएंगे जिनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं था, और उनके शत्रु उन पर विजय पा लेंगे। जैसे मूसा के द्वारा हाथ स्वर्ग की ओर ऊपर उठाकर इब्रियों की मध्यस्थता करने में उनकी विजय हुई,
इसी प्रकार जब परमेश्वर का इज़राइल विश्वास के साथ अपने महान सहायक के सामर्थ्य पर निर्भर करता है तो वो विजयी होता है। अभी भी ईश्वर की शक्ति और मनुष्य के प्रयत्नों का मेल आवश्यक है। मूसा को यह विश्वास नहीं था कि इज़राइल के निष्क्रिय रहने पर परमेश्वर उनके शत्रुओं को पराजित करेगा। जब महान अगुआ प्रभु से विनती कर रहा था तब यहोशू और उसके साहसी अनुयायी परमेश्वर और इज़राइल के शत्रुओं को खदेड़कर भगा देने का भरसक प्रयत्न कर रहे थे। अमालेकियों की पराजय के पश्चात परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिया, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। मृत्यु से कुछ समय पहले इस महान अगवे ने अपने लोगों को ये आज्ञा दी, स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकलकर आ रहा था तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया। जब तू मार्ग में थका मांदा था तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन सभी को मारा। उनको परमेश्वर का भय न था। तू अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना और तुम इस बात को न भूलना। व्यवस्था विवरण 25 आयत 17 से 19। इन दुष्ट लोगों के संदर्भ में प्रभु ने घोषणा की, यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। निर्गमन 17 आयत 16। अमालेकी परमेश्वर के चरित्र या उसकी सार्वभौमिकता से अनभिज्ञ नहीं थे, लेकिन उसका भय मानने के बजाय उन्होंने उसके आधिपत्य को ललकारने का दुस्साहस किया। अमालेक के लोगों ने मूसा के माध्यम से दिखाए गए आश्चर्यकर्मों को उपहास का विषय बना दिया और पड़ोसी देशों के भय का ठट्ठा उड़ाया गया। उन्होंने अपने देवी देवताओं की शपथ खाई कि वे इब्रियों का विनाश कर देंगे ताकि कोई भी भाग कर निकल नहीं पाए, और वे अहंकारी मन से कहते रहे कि इज़राइल का परमेश्वर उनका विरोध करने में असमर्थ होगा। उन्हें इसराइलियों द्वारा ना तो धमकी दी गई थी और ना ही चोट पहुंचाई गई थी। उनका आक्रमण बिल्कुल अकारण था। वे केवल परमेश्वर के प्रति अवज्ञा व घृणा को प्रकट करने हेतु उसके लोगों का विनाश करना चाहते थे। अमालेकी लंबे समय से कर पापी थे और उनके अपराधों ने परमेश्वर को प्रतिशोध लेने के लिए पुकारा, लेकिन फिर परमेश्वर ने उन्हें प्रायश्चित का अवसर दिया। लेकिन जब अमालेक के योद्धाओं ने इज़राइल के निहत्थे और थके हुए सिपाहियों पर आक्रमण किया तो उन्होंने अपने ही देश का विनाश निश्चित कर लिया। परमेश्वर अपने सबसे दुर्बल संतान की रक्षा करता है। स्वर्ग उन पर हुए अत्याचार और निर्दयता के किसी भी कृत्य को अनदेखा नहीं करता। जो भी उससे प्रेम करते हैं और उसका भय मानते हैं उन पर उसकी सुरक्षा का हाथ होता है। मनुष्य सावधान रहे कि वह उस हाथ पर वार नहीं करे, क्योंकि उस हाथ में न्याय की तलवार होती है। इसराइलियों के डेरे से कुछ ही दूरी पर मूसा के ससुर यित्रो का घर था। इब्रियों के छुटकारे का समाचार पाकर यित्रो मूसा की पत्नी और दोनों पुत्रों को मूसा के पास लौटाने के लिए उससे भेंट करने को निकला। मूसा को संदेशवाहकों द्वारा उनके आगमन की सूचना दी गई और वह प्रफुल्लित होकर उनसे मिलने गया और औपचारिक अभिनंदन के बाद उन्हें अपने तंबू में ले गया। मिस्र से इज़राइल का नेतृत्व करने में खतरों से बचाने के लिए वह उन्हें पीछे छोड़ आया था, लेकिन अब वह उनकी संगति का सुख भोग सकता था। उसने यित्रो को इज़राइल के लिए किए गए सभी कार्यों का वर्णन किया और कुलपिता आनंदित हुआ और परमेश्वर को धन्य किया। मूसा और पुरनियों के साथ मिलकर उसने बलि की भेंट चढ़ाई और परमेश्वर की करुणा के स्मरण में प्रतिभोज का आयोजन किया। डेरे में रहते हुए यित्रो ने देखा कि मूसा पर कितना बड़ा उत्तरदायित्व था। इतने विशाल अज्ञान और अप्रशिक्षित जनसमूह में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना बहुत बड़ा काम था। मूसा उनका मान्यता प्राप्त अगुआ और न्यायी था, और न केवल लोगों के कर्तव्य और सामान्य हितों की बातें वरन उनके बीच उत्पन्न लड़ाई झगड़ों को भी निर्णय के लिए उसके पास भेजा जाता था। उसने ऐसा होने दिया क्योंकि ऐसा करने से उसे उन्हें निर्देश देने का अवसर मिल जाता था। जैसा कि उसने कहा, मैं उन्हें परमेश्वर की विधि और व्यवस्था समझता हूं। लेकिन यित्रो ने विरोध करते हुए कहा, यह काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू इसे अकेला नहीं कर सकता, तुम निश्चय ही थक जाओगे। और उसने मूसा को सम्मति दी कि वह गुणी मनुष्यों को हजार हजार, सौ सौ, पचास पचास और दस दस मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे। ये पुरुष परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और कपटीपन से घृणा करने वाले होने चाहिए। उन्हें छोटे छोटे मुकदमों को मूसा के सम्मुख लाना था। यित्रो ने कहा, तू इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया कर और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट करके जिस मार्ग पर इन्हें चलाना है और जो जो काम इन्हें करना हो वह उनको जता दिया कर। इस सम्मति को मूसा ने स्वीकार किया और इससे न केवल मूसा को राहत मिली वरन इसके परिणाम स्वरूप लोगों में संपूर्ण शांति व्यवस्था स्थापित हो गई। परमेश्वर ने मूसा को बहुत सम्मानित किया था और उसके हाथों आश्चर्य कर्म करवाए थे, लेकिन दूसरों को निर्देश देने के लिए चुने जाने के तथ्य ने उसे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने दिया कि स्वयं उसे किसी निर्देशन की आवश्यकता नहीं थी। इसराइल के नियुक्त अगुवे ने मिद्यान के धर्मपरायण याजक के सुझावों को शांति से सुना और उसकी योजना को एक ज्ञानपूर्ण आयोजन के रूप में अपनाया। रपीदीम से वे लोग बादल के स्तंभ के पीछे पीछे यात्रा करते रहे। उनका मार्ग बंजर मैदानों के पार खड़ी ढाल वाली चढ़ाइयों से और पथरीली संकरी घाटियों में से होकर निकला। बालुई बंजर भूमि के पारगमन में उन्होंने अपने सामने उबर खाबड़ पहाड़ों को किले के समान अपने मार्ग के आड़े खड़े पाया, जो उनकी प्रगति में बाधा प्रतीत हो रहे थे। लेकिन निकट पहुंचने पर उन्होंने पाया कि पहाड़ों की दीवार में यहां वहां खुली जगह थी जिसके पार दूसरी घाटी सदृश्य हो रही थी। अब उन्हें एक गहरे कंकरीले रास्ते से ले जाया गया। यह एक भव्य और प्रभावशाली दृश्य था। दोनों ओर कई फीट ऊंचे पथरीली चट्टानों के बीच से जहां तक दृष्टि जा सकती थी, अपने भेड़ बकरियों और गाय बैलों समेत इसराइल की सेनाएं बहती धारा के समान प्रतीत हुए। और अब उनके सामने पवित्र वैभव लिए सीने पर्वत का अति विशाल अग्रभाग खड़ा था। बादल का स्तंभ सीने पर्वत के शिखर पर जा टिका और लोगों ने नीचे मैदानों में अपने तंबू गाड़े। यहीं पर लगभग एक साल तक उन्हें बसेरा करना था। रात को अग्निस्तंभ उन्हें ईश्वरीय सुरक्षा का आश्वासन देता और जब वे निद्रामग्न हो जाते तब उनके शिविर पर हल्के से स्वर्ग की रोटी गिरती थी। भोर पहाड़ों की मेढ़ों को स्वर्णिम कर रही थीं और सूरज की स्वर्णिम किरणें तंग नदी घाटियों को भेद रही थीं और इन थके मांदे यात्रियों को करुणा की किरणों सी प्रतीत हो रही थी। हर तरफ उबड़ खाबड़ ऊंचाइयां अपनी सुनसान भव्यता में सनातन स्थायित्व और तेजस्विता को दर्शाती प्रतीत हो रही थीं। यहां लोगों का मन पवित्रता और श्रद्धायुक्त भय से प्रभावित हुआ। जिसने पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तोला है, यशायाह 40 आयत 42, उसकी उपस्थिति में मनुष्य को उसकी अज्ञानता और दुर्बलता का आभास कराया गया। यहां प्रभु ने अपनी निजी आवाज में घोषणा द्वारा अपने लोगों पर अपनी अपेक्षाओं की छाप छोड़ने के लिए उन्हें इकट्ठा किया। उनमें महत्वपूर्ण व सुधारवादी परिवर्तन लाया जाना था, क्योंकि मूर्ति पूजा से उनका चिरकालीन संबंध और दासत्व के निम्नकारी प्रभावों ने उनके आचरण व चरित्र पर अपनी छाप छोड़ दी थी। परमेश्वर उन्हें अपने बारे में ज्ञान देकर उन्हें उच्चतर सात्विक स्तर पर उठाने के लिए प्रयत्नशील था।